आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
आज से शुरू हो रहे हैं पावन नवरात्रि के 9 दिन। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के आगमन के साथ ही वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा, श्रद्धा और उत्साह का संचार हो जाता है। ये 9 दिन सिर्फ भक्ति के ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक सोच और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। वहीं सिंधी नव वर्ष की शुरुआत भी आज ही से हो रही है, तो चलिए इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, SBS हिंदी सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रोग्राम के लिए मेलबर्न स्टूडियो से लाइव मैं ज्योतिका आपके साथ जुड़ी हूँ। सबसे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुरुवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं, जिनकी भूमि पर से ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। भाई, हर रोज की तरह आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों की प्रमुख खबरें। इसी के साथ साथ गीत संगीत भी होगा और होंगी ढेर सारी प्रस्तुतियां भी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है प्रोग्राम में। सबसे पहले एक रिपोर्ट जो SBS को पश्चिमी सिडनी में एक हब बनाने की फंडिंग से जुड़ी हुई है। फिर पैसिफिक आइलैंड्स पर दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा मौसम खराब रहते हैं, ऐसा क्यों है ये जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में सिंधी समुदाय के नववर्ष से जुड़ी एक खास प्रस्तुति आपके लिए लेकर आएंगे। भाई, अब बारी है आज के सवाल की भी। अब हम जानते ही हैं कि आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से लोग नवरात्रों में व्रत भी रखते हैं। और अगर तीज त्योहार की बात की जाए तो इनमें खाना पीना या कहें व्यंजनों का बहुत ही अहम स्थान होता है। अब ऐसे में नवरात्रों का भी अपना एक खास खाना होता है। आपको हमें बताना है कि नवरात्र में आपका फेवरेट खाना कौन सा होता है, फिर चाहे आप व्रत रखते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बिना व्रत रखे भी नवरात्र का खाना खूब एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है और हमें मैसेज करना है और बताना है कि नवरात्र में आपका फेवरेट खाना कौन सा है। उसके लिए नंबर आप जानते ही है ना, 04397997667। भाई, आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा, भूलिएगा मत। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और सबसे पहले इस वक्त की प्रमुख खबरें न्यूज फ्लैश के जरिए। नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। पेश है अब तक की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने ईंधन आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय ईंधन समन्वयक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय कैबिनेट की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं ने इस समन्वयक की नियुक्ति की, जो मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण संभावित आपूर्ति बाधाओं और कीमतों में बढ़ोतरी पर नजर रखेगा। साथ ही जिन क्षेत्रीय इलाकों में ईंधन की कमी हो रही है, वहां अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी की जाएगी। करीब 500 लोगों को नुम्बुलवर में स्थित दूरस्थ गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया समुदाय से निकाला जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेले अगले 24 घंटों में तट पार करने की तैयारी में है। आपातकालीन सेवा एजेंसी सिक्योर एंटी का कहना है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को हवाई मार्ग से डार्विन ले जाया जाएगा। आज क्लोज द गैप डे के अवसर पर जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्वदेशी लोगों की कैद की दर लगातार बढ़ रही है। क्लोज द गैप कैंपेन का एक प्रमुख लक्ष्य ये रहा है कि अगले 5 वर्षों में एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर वयस्कों की कैद दर को कम से कम 15% तक घटाया जाए। कोषाध्यक्ष जिम चालमर से उम्मीद है कि वे आज पूंजीगत लाभ और व्यापार कर नियमों में और सुधारों की रूपरेखा पेश करेंगे। उनकी ये टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है जिनमें ये कहा गया है कि ट्रेजरी पूंजीगत लाभ कर में छूट, नेगेटिव गियरिंग, ट्रस्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहन कर छूट में संभावित बदलावों की समीक्षा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के मकान मालिक रिकॉर्ड के अनुसार अपनी अब तक की सबसे मजबूत वित्तीय स्थिति में है। डोमेन की नवीनतम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अनुसार औसत पुनर्विक्रय यानी रीसेल मुनाफा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 2025 की दूसरी छमाही में 97.5% मकानों की पुनर्विक्रय और लगभग 88.3% यूनिट्स के पुनर्विक्रय में लाभ हुआ। ईरान ने कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात में तेल सुविधाओं को तुरंत खाली कराने की अपील की है। उसका कहना है कि अगले कुछ घंटों में हमले हो सकते हैं। ईरानी मिसाइलें पहले ही रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित औद्योगिक केंद्र पर हमला कर चुकी हैं, जो उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। वहीं सऊदी अरेबिया का कहना है कि उसने रियाद की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है, साथ ही पूर्वी क्षेत्र में एक गैस सुविधा को निशाना बनाने वाले ड्रोन को भी निष्क्रिय कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और खाड़ी क्षेत्र में अपने सहयोगियों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सहायता के लिए दबाव बनाए रखने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बीच अमेरिका के पास इस व्यवधान से निपटने की योजना है। ये हिस्सा दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल परिवहन का मार्ग है और यहां पैदा हुई स्थिति के कारण वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खबरें भारत से। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये अनुष्ठान करेंगी। कार्यक्रम में हजारों अतिथि, संत और श्रमिक शामिल होंगे तथा पूरे आयोजन को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज यानी 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आप सुनते रहिए SBS हिंदी। और खबरों के बाद बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर, जो जुड़ी है SBS को पश्चिमी सिडनी में एक हब बनाने की फंडिंग का वायदा किया गया था फेडरल सरकार की ओर से बीते साल, जो अब रातों रात आई एक घोषणा में रद्द कर दिया गया है। क्यों लिया गया यह फैसला और क्या है इसका बहुसांस्कृतिक समुदायों पर प्रभाव, आइए सुनते हैं इस अंश में।
पश्चिमी सिडनी में स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी SBS का प्रोडक्शन हब बनाने की योजना अब आगे नहीं बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ SBS हिंदी से वृशाली जैन और अब आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट को विस्तार से। सिडनी के तेजी से बढ़ते पश्चिमी उपनगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे विविध इलाकों में से एक है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2016 से 2021 के बीच यहां की आबादी में 13% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 की जनगणना ये भी दिखाती है कि इस इलाके में विदेश में जन्मे लोगों की संख्या औसत से अधिक है और बड़ी संख्या में लोग घर पर अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं। कई लोग वेस्टर्न सिडनी को मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया का केंद्र मानते हैं और इसीलिए स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी SBS के लिए भविष्य में ये एक स्वाभाविक जगह भी समझी जाती रही। SBS विदेशी फिल्मों और फुटबॉल के साथ साथ अंग्रेजी के अलावा 60 से अधिक भाषाओं में ऑडियो कार्यक्रम प्रसारित करता है, लेकिन वेस्टर्न सिडनी में SBS का नया प्रोडक्शन हब बनाने की योजना को फेडरल सरकार ने अब रद्द कर दिया है। कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में SBS की कार्यवाहक प्रबंध निदेशक जेन पैल्फ्रीमैन ने इस बात की पुष्टि की है कि यह योजना अब आगे नहीं बढ़ेगी।
It is disappointing that the initiative will not be progressing given the opportunities it presented to expand SBS's facilities and content capacity, build on our existing work, tell more stories and deepen engagement with one of Australia's most diverse and fastest growing regions. The government has indicated that its decision has been made in the context of the current fiscal environment. I want to emphasize that this outcome does not reflect the quality or rigor of the work undertaken by SBS in developing the proposal.
तो योजना क्या थी? ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को वेस्टर्न सिडनी में एक प्रोडक्शन हब और टैलेंट इंक्यूबेटर विकसित करने के लिए फंडिंग दी थी। इस हब के तहत एसबीएस से और ज्यादा कार्यक्रमों के लिए एक स्थायी जगह बनाई जानी थी, जिसमें खबरें और समसामायिक कार्यक्रम, कई भाषाओं में ऑडियो सेवाएं और स्क्रीन कॉन्टेंट शामिल थे। इस योजना का उद्देश्य ये भी था कि स्थानीय समुदायों को SBS में नौकरी और शिक्षा के बेहतर अवसर मिले और उनका SBS से जुड़ाव और मजबूत हो। संचार मंत्री अनिका वेल्स के प्रवक्ता ने एक बयान में पुष्टि की कि वेस्टर्न सिडनी में इस प्रोजेक्ट को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
The government will not be providing additional funding for the expansion proposed by SBS at this time. We will continue to support the important work of SBS now and into the future. The Albanese government is proud to have delivered 5-year funding terms to the SBS. This funding will see more than $1.7 billion invested into our multicultural national broadcaster through to 2027 to 28. This funding is complemented by the government's recent commitment to SBS examines to tackle misinformation and foster social cohesion.
पिछले साल SBS ने इस हब के लिए संभावित स्थानों की तलाश में एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था। कई स्थानीय काउंसिल्स ने इसमें रुचि दिखाई, जिनमें लिवरपूल सिटी काउंसिल भी शामिल थी। एक बयान में मेयर नेड मनून ने फेडरल सरकार के इस फैसले को पीछे हटकर उम्मीद और महत्वाकांक्षा के साथ किए गए छल जैसा कदम बताया है। ब्लैकटाउन काउंसिल ने भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी। ब्लैकटाउन शहर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध इलाकों में से एक है, जहां 180 से अधिक देशों में जन्मे लोग रहते हैं और 185 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यह आबादी के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा काउंसिल क्षेत्र भी है। मेयर ब्रैड बंटिंग का कहना है कि वे बजट की सीमाओं को समझते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस योजना पर फिर से विचार कर सकती है।
Western Sydney is a perfect place for SBS. The multicultural community that we have out here, bringing things further west is also a good idea. We all don't live in the eastern suburbs anymore. There's a lot of creative people that live in Western Sydney, and I think it would be a fantastic place to have SBS. But saying that, also I get budgetary restraints. I get that, at this particular time they're saying not now. I believe the federal government is serious about bringing SBS to Western Sydney. They wouldn't have put together this study costing millions of dollars if they weren't serious about it. So I'm encouraging the minister to be able to keep talking to Treasury to find the funding in future budgets to bring SBS where I think its his real home is in Western Sydney.
Western Sydney Dialogue एक गैर लाभकारी व्यवसाय और एडवोकेसी समूह है। समूह के CEO एडम लीटो का कहना है कि इस फैसले से वे निराश हैं, लेकिन उनका मानना है कि भविष्य में किसी न किसी रूप में वेस्टर्न सिडनी में SBS हब की संभावना बनी है।
I think our hope was that there'd be a cost neutral option that would still allow this facility to come to life in Western Sydney, and we still remain hopeful that that does happen. We're aware of a number of options in the region that presented cases, solid cases, we understand, to have a production hub in its centre, and we're really hopeful that the government will relook at some of these options. It might not have been the preferred option, but we believe that there's an option A, B and C that could be considered that could provide a solution that's not going to cause a drain on government's budget.
वहीं SBS हिंदी की नताशा कॉल से बातचीत करते हुए बहुसांस्कृतिक मामलों की मंत्री एन एली ने कहा कि अनिश्चित आर्थिक हालात में सरकारों को उसी समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसले लेने पड़ते हैं।
And unfortunately, not every good idea can be funded. However, that does not mean that we do not continue to value the important work of SBS. The important contribution that SBS makes to ensuring that commitment and that vision of multiculturalism in Australia as part of our character, part of our national character, part of our national identity. And we will ensure that this decision does not impact on service delivery. We have a commitment to SBS to the tune of $1.7 billion over the next 5 years. We are sticking to that commitment. And as I said, unfortunately, the times dictate that we sometimes have to make decisions that I understand would be disappointing to some people.
वहीं जेन पैल्फ्रिमन ने कहा कि इस फैसले के बावजूद एसबीएस वेस्टर्न सिडनी के समुदायों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वे खबरों, ऑडियो और स्क्रीन कंटेंट के जरिए इन समुदायों की कहानियां लगातार सामने लाता रहेगा। एसबीएस न्यूज से पेगी ग्वाकुमलोस और एसबीएस हिंदी से नताशा कॉल की इस खबर को एसबीएस हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वैशाली जैन ने।
और इसी रिपोर्ट के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार मिलते हैं। अभी बहुत कुछ है शो में बाकी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए एसबीएस हिंदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप सुन रहे हैं एसबीएस हिंदी मेरे यानी कि ज्योतिका के साथ। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी यानी माइग्रेंट्स की कहानी सिर्फ टॉयलेट साफ करने या फिर बस और उबर चलाने तक ही सीमित है? इस साल 16 से 21 मार्च तक हार्मनी वीक के मौके पर बहुसांस्कृतिक मंत्री एन एली ऑस्ट्रेलिया वासियों से अपील कर रही हैं कि वे प्रवास, पहचान और अपनेपन के प्रति अपने नजरिए में बदलाव लाएं। इस पॉडकास्ट में लेबर पार्टी की मंत्री बताती हैं कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया को सामाजिक एकता, बहुसांस्कृतिकता और प्रवासियों के योगदान से कैसे आकार मिल रहा है। आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट अंग्रेजी में किया गया है और इसे दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस पॉडकास्ट का पहला भाग।
एसबीएस हिंदी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ अहम मुद्दों को लेकर मल्टीकल्चरल मिनिस्टर एन एली से एक खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों को अपनापन महसूस कराने और उन्हें समाज में और बेहतर तरीके से शामिल करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, हार्मनी वीक जैसे कार्यक्रमों के द्वारा सरकार सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है और लोगों को अलग अलग संस्कृतियों को मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आइए जुड़ते हैं मिनिस्टर एन एली से।
सो आई सॉ योर वंडरफुल स्पीच इन इंडिया व्हेन यू वर ट्रैवलिंग देयर। यू मेंशन्ड अबाउट महात्मा गांधी एज अ जायंट एंड इंडियन डायस्पोरा इज very important, that's what you said in your speech. But back home, when we see attacks on temples, and recently in Melbourne we saw a Mahatma Gandhi statue cut and stolen, what message do you have for the diaspora during the Harmony Week and how your government is making sure they belong?
Thank you. First of all, let me say it was not my first trip to India.
Oh,
I did actually visit India earlier as a professor. And I went to the University of Hyderabad and spent 6 days at the University of Hyderabad. But it was my first trip to New Delhi. And it was such a memorable occasion, I have to say. And I do understand. I do understand the kinds of the offences that occur when the Indian community here, the diaspora here, do not feel safe and secure. And I want to say this. I want to say that everybody from the Indian diaspora belongs in this community, in this country, and are highly valued as a part of the Australian fabric, the Australian society, historically and in a contemporary sense as well. Hugely, hugely valued community. And we want Indian Australians to feel safe. This, you know, the spate of attacks against Indian Australians, including, of course, the anti-immigration marches, you know, some of the commentary that came from some politicians around specifically targeting the Indian community, have absolutely no place in Australia. And you will have heard not just myself, but other members of our government come out strongly, really strongly, against that commentary. Yeah, you know, I think the way that you achieve a socially cohesive society, one of the pillars of that, one of the pillars of multiculturalism and a socially cohesive multicultural society, is ensuring that everybody belongs and has a sense of belonging and a sense of or a buy-in to this Australian identity. That being Australian and that sense of belonging applies equally to everyone. Doesn't matter what your skin colour is, doesn't matter where you came from, doesn't matter how long you've been in this country or where your parents came from. So one of the things, or the most important thing that I can say to the Indian diaspora is do not question your belonging and do not let others make you question your belonging, okay? Because you do belong. You do belong and you are valued. And the contributions that the Indian communities have made to Australia economically, socially, politically, are countless and invaluable. And they are, as I mentioned, they are historical as well as contemporary. So, you know, I know it can wear you down. I've been in that situation myself. You know, it can wear you down and it can make you question. But I would say nobody has the right to make you question your belonging. Nobody has the right to make you question your identity as Australians.
When we talk about multiculturalism and social cohesion, we are often really talking about migration. Do you think migration has become increasingly politicized? And how can government reframe the conversation towards cohesion and inclusion?
Oh, this is such an important point, Natasha, because it's, you know, as I mentioned earlier, I view my role and the fact that, you know, I'm the first multicultural affairs minister to be appointed to cabinet. I view that as a great opportunity and a great platform to actually reimagine and reconfigure the narrative and the discussion about multiculturalism to really, you know, stand multiculturalism on its own and have social cohesion and migration and recognise where those things meet, but also to really separate them as concepts and embed multiculturalism as part of not just the Australian story, but the Australian identity. Now, if you look at Australia has always been diverse, right? Diversity is not new to Australia. It's ancient. It goes back 65,000 years with our First Nations people who spoke diverse languages, who practiced diverse cultures and traditions. It's embedded and it's sketched into our landscape, even from, you know, snowy mountaintops in Canberra to the red earth of Central Australia to the sandy beaches of Western Australia. Diversity has always been a part of our nation's character in every aspect of our nation's character. You're absolutely right that migration, multiculturalism, social cohesion are often spoken about in the same kind of frame. And there's a place for that. There is a place for that. But it shouldn't be the way in which we speak about them in a holistic manner, right? So when we talk about multiculturalism, it should be about every Australian. And I'm very, very mindful of when we talk about multiculturalism that we talk about multiculturalism in a way that appeals to second, third, fourth generation Australians, people like my children, right? Who may not have that same connections that me as a first wave migrant has with my birth country, which is Egypt. They may not have those same connections, and they may not have those same cultural traditions that they carry on, but they are still part of a multicultural kind of milieu of Australia. So I think that this is a great opportunity for us to reimagine, if you like, multiculturalism in a way that speaks to a modern Australia, where you have one quarter of our population has a parent or two that are born overseas, and where we're increasingly seeing second, third, and fourth generation migrant who, for them, that sense of belonging in Australia and that sense of identity that I spoke about earlier, how do we tap into that? How do we give them that sense of identity and belonging as well? So I take that very seriously, and it's part of my vision for in this portfolio of multicultural affairs that we redefine, reimagine, rescope multiculturalism to something that goes beyond the three C's, what I call the three C's, celebration, costume and cuisine. right? Love celebration, costume and cuisine. But let's look at the substantive issues of multiculturalism and how that translates into equality for all Australians and fairness for all Australians and participation for all Australians and belonging for all Australians.
तो ये था मल्टीकल्चरल मिनिस्टर एन एली के साथ हार्मनी वीक के दौरान हुए इंटरव्यू का पहला भाग. अगले भाग के लिए बने रहें एसबीएस हिंदी के साथ और इस पूरे इंटरव्यू को आप हमारी वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं.
तो जैसे कि आपको नताशा ने बताया कि ये बातचीत का पहला हिस्सा था. बहु सांस्कृतिक मंत्री एन एली के साथ बातचीत का दूसरा हिस्सा हम कल अपने कार्यक्रम में ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो उसे सुनने के लिए आप बने रहिएगा एसपीएस हिंदी के साथ. फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलते हैं और बात करेंगे चेटी चंद के बारे में, यानी चैत्र चांद सिंधी समुदाय के नव वर्ष के बारे में, और साथ ही साथ बातचीत होगी नवरात्रों के बारे में भी. और आज का सवाल भी तो नवरात्र से जुड़ा हुआ है. मैंने आज आपसे पूछा है कि नवरात्रों के दौरान आपका फेवरेट खाना कौन सा है. मैसेजेस आने मुझे शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे आपके और ढेर सारे मैसेजेस का इंतजार है. तो फोन उठाइए और हमें मैसेज कीजिए और इस सवाल का जवाब भी दीजिए, फिर बातचीत होती है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं एसबीएस हिंदी मेरे यानी कि ज्योतिका के साथ और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर. जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी चेटी चंड की, या कहें चैत्र चांद की. ये सिंधी समुदाय का नव वर्ष है जो आज के दिन मनाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा है सिंधी समुदाय और कैसे इस त्योहार के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जिंदा रखा जा रहा है सिंधी लोक परंपरा को और भाषा को, आइए सुनते हैं वृषैली जैन की इस खास प्रस्तुति में.
चैत्र का महीना शुरू हो चुका है. चैत्र के महीने का ये दिन सिंधी समुदाय के लिए एक खास अहमियत रखता है. चैत्र शुक्ल के पहले चंद्रमा की रात्रि यानी प्रतिपदा के दिन चेटीचंड या चैत्र चांद का त्योहार मनाया जाता है. 2021 के सेंसस के आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में करीब 2600 सिंधी भाषी लोग रहते हैं. ये साल 2016 के मुकाबले 65% से अधिक की बढ़त है. ऐसे में सिंधी नववर्ष यानी चेटीचंड का ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाने वाला उत्सव साल दर साल बड़ा हो रहा है. नवीन ननकानी सिडनी सिंधी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. सिडनी सिंधी एसोसिएशन बीते 34 सालों से ये आयोजन करता आ रहा है. अध्यक्ष नवीन ननकानी इस त्योहार के महत्व के बारे में बताते हैं.
सिंधी इस त्योहार को भगवान झूलेलाल के जन्मदिन समारोह के रूप में भी मनाते हैं. उडेरो लाल के नाम से भी जाना जाता है, उनके संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है. इस दिन वरुण देव जो कि झूलेलाल के रूप में अवतरित हुए थे, इस दिन जल देवता की पूजा कर उनका आभार जताया जाता है.
मान्यताओं और पर्व की परंपराओं को समझाते हुए मेलबर्न से सिंधी एसोसिएशन ऑफ विक्टोरिया के पूर्व अध्यक्ष गोपाल गनवानी कहते हैं,
ट्रेडिशनली बहुत सारे रीजंस है इसको सेलिब्रेट करने के. नई फसल कटती है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, बट उससे कहीं ज्यादा भगवान झूलेला और उनको वरुण देव भी कहा जाता है, तो वो अपीयर हुए थे इस दिन टू सेव जो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ सिंध में रहती थी उस जमाने में. और एक बड़े जालिम से वहाँ पे एक रूलर होते थे मर्क शाह नाम से, वो फोर्स्ड कन्वर्जन किए जा रहे थे उस वक्त, तो उनको बचाने के लिए झूलेलाल जी अपीयर हुए थे. तो वो उनका जन्म या उनका अपीयरेंस दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन.
हालांकि पुराने समय में चेटीचंड के त्योहार को कई दिनों तक मनाया जाता था. नवीन जी बताते हैं,
इसको वैसे तो काफी दिनों तक मनाया जाता है. इसमें बहराना साहब निकाला जाता है जिसे भेंट भी कहा जाता है. इसमें हम तेल का दिया, इलायची, काफी सारी चीजें मिक्स करके एक बहराना साहब बनाया जाता है. साथ में झूलेलाल जी की प्रतिमा भी लगाई जाती है और उसको हम लेके झांकी के रूप में निकलते हैं और फिर बाद में उसको विसर्जन किया जाता है. काफी लोगों का ये भी है कहना है कि पहले यहाँ पे तो अब वो नहीं होता है, लेकिन 40 दिन तक महिलाएं व्रत वगैरह रखती थी, उपवास रखती थी और उसको क्या कहा जाता था, चालियो साहब।
आज के समय में चेटीचंद का त्योहार जुलूस निकाल के मनाया जाता है, जिसका मुख्य आकर्षण होता है बैराना साहब। सिंधी एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड से रवि अचवानी आगे बताते हैं।
चेटीचंद पे बैराना साहब होता है, दिया जलाया जाता है बैराना साहिब पे झूलेलाल साईं के लिए। हम लोग बैराने को लेके अपने सर पे लेके घूमते हैं, उसको चारों तरफ से अपने जोत जो उसको कहते हैं अखंड जोत होती है ये, इसे हम लोग लेके पूरे एरिया में अपने घरों में जाके घुमाया जाता है, अपने इधर उधर शहरों में घुमाया जाता है। तो इससे जो भी इसका इट गिव्स अ वेरी बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट और जो भी नेगेटिविटी है इससे दूर हो जाती है। बचपन से हमारा चेटीचंद मनाते आए हैं। हमारा पूरा एक एरिया होता था जहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक सारे सिंधी ही रहते हैं एंड वी ब्रॉन एंड बॉटअप उस एरिया में। जैसे कि दिवाली पे सफाई होती है, हमारे घर में चेटीचंड पे भी सारी सफाइयां होती थी। हम लोग घर को सजाते थे, साफ सुथरा करते थे, सजाते थे, लाइट जलाते थे और जो चेटीचंड था उसमें जुलूस निकलता था। हम लोग 2 किलोमीटर तक पैदल उस जुलूस के साथ जाते थे। वहां पे चेटीचंड में एक शरबत होता है, दैट्स मिल्क एंड रोज शरबत जो होता है वो उसको मिक्स करके जो ये दिया जाता था, ये बहुत ही फेमस होता था।
हर त्योहार की अपनी कहानियां होती हैं, जो अपनी माँ बोली में कही बोली जाती हैं। चेटीचंद की कहानी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पल रही दूसरी पीढ़ी को कैसे सुनाई जा रही है? गोपाल गनवानी बताते हैं कि उनकी संस्था ने इसका एक नायाब तरीका ढूंढा।
मैं आपको कुछ साल पीछे ले जाऊंगा यहाँ पर कि हमने उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये जो पूरी कहानी है जिसमें झूलेलाल अवतरित हुए थे आज के दिन, तो हम लोगों ने उसका एक प्ले बनाया था। वैसे एक ऐसा प्ले जो हिंदी, इंग्लिश और सिंधी तीनों भाषाओं का एक मिक्स हमने बनाया था, जो बच्चों को ताकि समझ में आए कि ये क्यों मनाया जा रहा है दिवस। तो उन्होंने ये सारी जो कहानी थी वो हमने उसमें उनको समझाने की कोशिश की है। उसमें बच्चे भी हमारे साथ एक्ट कर रहे थे। अलग अलग तरीके हैं लोगों को समझाने के, सो हम लोगों ने ये तरीका सिलेक्ट किया था कि शायद पता चल जाए बच्चों को।
सिडनी से नवीन ननकानी इस त्योहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी साझा करते हैं।
लैंग्वेज डेफिनेटली हम कोशिश हमारी रहती है कि हम अपने आगे बच्चों को लैंग्वेज सिखा सके, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधी इंडिया के पार्टीशन से पहले सिंध में रहा करते थे। पार्टीशन के बाद हिंदू सिंधी इंडिया में माइग्रेट हो गए। पार्टीशन से पहले सिंधी लैंग्वेज उर्दू में लिखी जाती थी, लेकिन वो इंडिया में आने के बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। इंडिया में हालांकि काफी ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं कि उसको हिंदी लैंग्वेज के साथ लिखा जाए, जैसे वो देवनागरी बोलते हैं। इस कंट्री में आने के बाद काफी बच्चों को तो हिंदी लिखना भी नहीं आता है, तो उसमें वो भी दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम सिंधी लैंग्वेज बोलना और समझना जरूरी है। हमारी कोशिश यही रहती है कि चेटीचंद के फंक्शन पे हमारी वार्तालाप जो भी हो या जो भी प्रदर्शन करें वो सभी कुछ सिंधी लैंग्वेज में करें।
बात जब भारतीय त्योहारों की हो तो पारंपरिक पकवान कैसे पीछे रह सकते हैं? गोपाल गनवानी बताते हैं कि इस त्योहार की खास रसोई क्या है।
आपने बड़ा अच्छा कहा कि लोगों को जोड़ने के लिए खाना एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। सिंधी खाना जो है, जिन्होंने बचपन से हमने घरों में खाई है कुछ चीजें, मैं कुछ चीजों के नाम लेता हूँ। सिंधी कढ़ी
मेरी पर्सनल फेवरेट
तो सिंधी कढ़ी भी यहाँ पर बनती है। उस दिन काफी सारे फैमिली मेंबर्स, हम कोई टास्क दिया जाता है कि भाई आप सिंधी कढ़ी बनाएंगे। वेजिटेबल्स, बीन्स के साथ उसको, यू नो, बेसन के साथ वो उसको बनाया जाता है। मैं कहूंगा कि वो सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे वेजिटेबल और बीन्स होने की वजह से प्रोटीन और गुड फाइबर्स होते हैं उस, तो वो बनते हैं उस दिन। काफी सारी सिंधी डिशेज बनती है। एक और है बी पटाटा कहते हैं हम उसे, कमल ककड़ी की सब्जी होती है और आलू के साथ वो सब्जी बनती है। साई भाजी जो पालक और दाल का एक मिश्रण है वो उस दिन बनता है। यानी किसी की किस्मत अच्छी रही तो दाल पकवान की एक और डिश है। तो ये सारी चीजें होती हैं उस दिन।
इसी तरह नवीन ननकानी और गोपाल गनवानी दोनों इस उत्सव के खास नृत्यों पर भी चर्चा करते हैं।
नाच गाना होता है, भजन वगैरह होते हैं। यहाँ पे छेज की जाती है जो कि काफी लोग डांडिया के रूप में उसको जानते हैं। तो छेज डांस वगैरह होता है, फिर उसके बाद भोजन प्रसाद वगैरह होता है। हमारा मेन सिग्निफिकेंस ये है अपने अगली जनरेशन के बच्चों को सिखाना सिंधी लैंग्वेज के बारे में, सिंधी संस्कृति के बारे में।
एक डांस किया जाता है एक्चुअली इस दिन, डोंकला डांस कहते हैं उसको, जो इट्स अ मिक्स वेरी सिमिलर टू डांडिया डांस जो आपने देखा हो शायद गुजराती करते हैं, पर उनका, उनकी शैली, उनके अंदाज और उनका जो जो उसमें रिदम है थोड़ा अलग है। पर वो एक बड़ी अच्छी याद है हमारे पास कि इंडिया में भी हम खेला जाता था और यहाँ हमने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश भी की है।
त्योहार की पारंपरिक वेशभूषा भी होती है,
जैसे इंडिया का पारंपरिक पजामा कह लीजिए या कुर्ता पहनते हैं उस दिन कलरफुल। सिंध का एक अपना एक प्रिंट है, सिंधी अजरक जिसको हम दुपट्टा कहते हैं, गले में पहना जाता है जो उसका एक अलग शैली में बनता है वो। और एक सिंधी टोपी जो सिंध से काफी पॉपुलर है जो पहनी जाती है, एक अलग तरीके से वो हाथ से बुनी जाती है। और हिंदुस्तान में वो उसके कुछ अलग अलग वर्जन आए हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सिंधीज जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में, सिंध जो स्टेट था वो पाकिस्तान को दिया गया, उसके बाद से काफी माइग्रेशन हुआ, तो जो कल्चरल लोग अपने साथ वहां से जितना ला सकते थे या रिक्रिएट कर सकते थे वो किया जा रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में सिंधी समुदाय एक छोटा सा समुदाय है, ऐसे में रवि अचवानी बताते हैं कि क्यों ऐसे त्योहार मनाना जरूरी है और कैसे उनकी संस्था इसके लिए साथ आई।
As a four family, we started a group in our Queensland. We progressed through with this one and now around we have 40-45 families from Indian origin, Sindhis, in Brisbane. और जैसे हमने ये देखा तो हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, everyone was very enthusiastic कि हमें यस कुछ न हमें किस तरीके से हम अपने सिंधी बोली को बनाए करें।
इंडिया में चेटीचंड को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हम अपने देश से बाहर आए हैं और हम अपने सेकंड जनरेशन हमारे बच्चों को वो सब दिखाना चाहते हैं, वो सब सिखाना चाहते हैं, जो हमारी सिंधी बोली है वो हमें अपने बच्चों को पास थ्रू करनी है।
ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुसांस्कृतिक देश में जहां ना ही केवल समुदाय अपना त्योहार मनाते हैं बल्कि उन्हें अन्य मतों वाले समुदायों के साथ साझा भी करते हैं, नवीन जी बताते हैं कि सिडनी में 34 सालों से चले आ रहे चेटीचंड के आयोजन का क्या प्रभाव रहा है।
पर मैंने ये नोट किया है कि चेटीचंड के उत्सव पे नॉन सिंधीज थोड़े कम आते हैं, फिर भी कुछ आते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी कुछ हुआ जाता है वो सिंधी लैंग्वेज में किया जाता है तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो हम दूसरे त्योहार मनाते हैं सिंधी के, उसमें उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारा फोकस ना सिर्फ सिंधी संस्कृति पे है पर हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों के ऊपर भी है, तो उस वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट उनमें अधिक रहता है।
यादों, कहानियों, उम्मीदों और उमंगों के त्योहार चेटीचंड यानी नव वर्ष की SBS हिंदी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस अंश में साझा किए गए सभी विचार निजी हैं, SBS ना ही उनसे सहमत है और ना ही असहमत। SBS हिंदी से आपके लिए इस रिपोर्ट को लेकर के आई वृषाली जैन।
तो लीजिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि SBS हिंदी की ओर से भी आप सभी को चेटी चंद की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, पहला नवरात्रा है और आज का सवाल भी यही था कि नवरात्रों के दौरान आपका फेवरेट खाना क्या है। बहुत ढेर सारे पकवान बनते हैं नवरात्रों के दौरान, अलग अलग विभिन्न विभिन्न, तो आपका फेवरेट कौन सा है, आपको कौन सा पसंद है और क्या आप अपने खाने के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं? जरा फोन उठाइए, मैसेज कीजिए और हमें बताइए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, सुनते रहिए SBS हिंदी। स्वागत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरे यानी कि ज्योतिका के साथ। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और अब बारी है हमारे प्रोग्राम की आखिरी प्रस्तुति का। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसिफिक आइलैंड्स पर दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा खराब मौसम की घटनाओं का असर ज्यादा क्यों पड़ता है? इस अंश में इसी विषय पर जानकारी लेते हैं। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी साथी अनीता बरार, तो आइए फिर सुनते हैं।
Sea level rise and extreme weather events, the impact it's having on the Pacific is just unprecedented.
पैसिफिक आइलैंड्स दुनिया के सबसे बड़े समुद्र से घिरे हैं, एक ऐसा समुद्र जो आने वाले दिनों के लिए न सिर्फ इस इलाके का बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी मौसम बनाता है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ने से देश इससे जुड़ी आपदाओं से होने वाली तबाही का सबसे अधिक असर झेल रहे हैं। आवर पैसिफिक इस श्रृंखला के इस एपिसोड में हम ये जान रहे हैं कि पैसिफिक आइलैंड पर दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक खराब मौसम की घटनाओं का असर अधिक क्यों पड़ता है और ये भूगोल स्थिति से उबरने की कोशिशों पर कैसे असर डालता है। 2020 में साइक्लोन हेरोल्ड ने सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, टोंगा और वनुआतू को बुरी तरह से प्रभावित किया।
When I visited in mid-2024, it still lay in ruins.
ये हैं पीटर जेमिसन, जो पैसिफिक एड के सीईओ हैं। ये एक संगठन है जो वनुआटू के सबसे बड़े आइलैंड पर स्कूल को फिर से बनाने का काम कर रहा है।
Kids were playing at lunchtime and climbing over the rusty tin and great big timbers that lay on the ground and up on it, leaning up to the roof. Nothing had been done to restore the school. It's not the government didn't want to. The government hasn't got the money because there's so many disasters. So this school had lay in ruins for 5 years.
ये पैसिफिक के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। माकी इगराशी पपुआ नई गिनी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज की देशीय डेलीगेशन की प्रमुख हैं। वो कहती हैं कि आपदाओं का असर, जिसमें बहुत खराब मौसम की घटनाएं भी शामिल हैं, उनसे निपटने में समय लगता है।
Because of the remoteness and also scale compared to the size of country and the capacity of Red Cross national societies sometimes go beyond for 5 years.
पैसिफिक आइलैंड देशों के लिए आपदाओं से निपटने में बिना रुकावट वाले आवाजाही रास्तों की मुश्किल एक बड़ा कारण है।
Sometimes we have to use a small called a dinghy, like a fishery boat, to take 7 hours. The other day I was talking to Cook Island. It takes like 1 week to get the island. So that's the you can see the scale, the distance, or the access challenge in the Pacific.
माकी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन अति मौसमीय घटनाओं से होने वाली तबाही को और खराब कर रहा है।
What we are seeing in the Pacific is that climate change isn't just an environmental issue. So it is fundamentally reshaping the development pathways. And countries like PNG or next door the Solomon Island, Vanuatu, and also Kiribati, trying to build or rebuild schools, health systems, while defending their communities, coastlines, food system from accelerating climate impact.
To पैसिफिक आइलैंड्स जलवायु परिवर्तन अति मौसम की घटनाओं के लिए सबसे आगे क्यों हैं? पहले तो बात यह कि दक्षिण एशिया में मालदीव के अलावा ये आइलैंड दुनिया में अकेले ऐसे हैं जो निचले प्रवाल द्वीप हैं। इसका मतलब है कि वे रिंग के आकार के हैं और आमतौर पर समुद्र तट से सिर्फ 1 या 3 मीटर ऊपर हैं। एक लगून को चारों ओर से घेरे हुए तुलनात्मक रूप से जाने कि ग्रेटर सिडनी समुद्र तल से 53 मीटर ऊपर है और दूसरा उनकी लोकेशन भी उन्हें बहुत बार अति मौसमी घटनाओं के संपर्क में लाती है।
Well, primarily because they sit in the biggest driver or engine of weather on the planet. So the Pacific Ocean, it's our largest ocean, obviously. So it stores an enormous amount of heat from the sun. It moves that heat around through ocean currents, and that movement of heat and moisture actually creates not just the weather for the coming days and extreme weather for that area or for the region, but in fact for the whole world.
Andrew Jones, जो ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी में इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जनरल मैनेजर हैं, वो कहते हैं कि इसी से ये देश किसी और से अधिक मौसमी घटनाओं का असर महसूस करते हैं और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन भी इसमें मदद नहीं कर रहा। आवर पैसिफिक, इसका ये एपिसोड ओलिविया डिओरियो ने बनाया और इसे प्रस्तुत किया अनीता बरार ने। अधिक जानने के लिए sbs.com.au/sbsexamines पर जाएं।
तो चलिए इसी के साथ आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं, वो भी आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो कहीं मत जाइएगा और मैसेजेस हमें करती रहिए। आज का सवाल था कि नवरात्रों के दौरान आपका फेवरेट खाना कौन सा है। तो जो सबसे पहला मैसेज आज मेरे पास आया था वो एक 14 साल की बच्ची कियाना का आया था। कियाना कहती हैं कि आई एम फ्रॉम सिडनी और मेरा फेवरेट फूड है साबूदाना वॉफल। बड़ा इंटरेस्टिंग है। माय पेरेंट्स एंड आई एक्सपेरिमेंटेड मेकिंग वॉफल यूजिंग साबूदाना खिचड़ी एंड इस वक्त वो अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए जा रही है और हमारा शो भी सुन रही है और उन्होंने कल भी हमारा शो सुना। बहुत बहुत शुक्रिया कियाना, और आपका एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। साबूदाना वॉफल बहुत इंटरेस्टिंग। एक और मैसेज हमें आया है क्रेगी बन से राजेंद्र वोहरा जी, जो लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार राजेंद्र जी। भाई हमारे यहाँ तो नवरात्रों में बहुत कुछ बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट है साबूदाना की खीर। भाई आपने बिल्कुल सही कहा राजेंद्र वोरा जी, साबूदाना खीर की का कोई जवाब नहीं है, क्या खीर बनती है। और इसके बाद फिर हमें मैसेज आया है पीयूष जी का, जिन्होंने हमें हैप्पी गुड़ी पर्वा, चेट चांद, हैप्पी उगाड़ी, हैप्पी बैसाखी कहा है। आपको भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं पीयूष जी, और सभी इसी तरह से खुशी से रहिए, प्यार बांटते रहिए एक दूसरे के साथ, और प्लीज़ मैसेजेस भी करते रहिएगा। और आपके मैसेजेस पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। वेल, ये मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला इसी तरह से जारी रखूँगी। अगला मैसेज हमें भेजा है प्रदीप गोहरानी जी ने, मेलबर्न में रहते हैं लेकिन बेसिकली हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमें मैसेज करने के लिए। इन्होंने भी सभी ऑस्ट्रेलिया वासियों को, खासकर सिंधी कम्युनिटी को, चेटी चांद की बधाई दी है और सबसे रिक्वेस्ट किया कि अपने बच्चों को सिंधी बोलना ज़रूर सिखाएं। भाई आप अपनी मातृभाषा अपने बच्चों को सिखाएं, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है, और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको सलाम है, क्योंकि हम अपनी जड़ों को तभी बचा पाएंगे जब हम उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन करेंगे, है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। और हेमलता पुरोहित जी ने मैसेज भेजा है, सभी को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं, मुझे भी दी हैं, मेरे सभी टीम वासियों को भी दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता जी, थैंक यू वेरी मच। लगातार आपके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका प्यार देख कर हमारे तरफ। और एक और मैसेज आया कुणाल जी, साबूदाना खिचड़ी और तिल के लड्डू। कुणाल जी आपने कर दी ना गड़बड़, अब दिल चाह रहा है कि फटा से ना बस साबूदाना खिचड़ी सामने प्लेट में आ जाए और ऊपर से तिल का एक लड्डू भी आ जाए, आह मजा आ जाएगा, वाह। चलो खैर ये तो मुझे घर जाके खुद ही बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने मैसेजेस हमें जरूर भेजिए और बताइए कि आपका नवरात्र का फेवरेट खाना कौन सा है। मैसेजेस में पढ़ूंगी और फिर बातें भी करेंगे। मन तो कर रहा है कि ढेर सारी बातें यूं ही आपके साथ करती रहूं, लेकिन क्या करूं, घड़ी की सुइयां भी इशारे कर रही हैं, जाने का वक्त हो गया। लेकिन जाने इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई प्रस्तुतियों के साथ और नए किस्सों के साथ। तो आप इसी तरह से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा, सुनते रहिए SBS हिंदी, खुश रहिए, प्यार बांटिए एक दूसरे के साथ, खुशियां बांटिए और एक दूसरे का ख्याल भी रखिए। और जो जो लिसनर्स ने आज हमें मैसेजेस किए, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।